ये आकाशवाणी है। अब आप प्रणय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज कुरुक्षेत्र से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव अभियान का शुभारंभ किया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हरियाणा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों के निर्माण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का निर्णय लिया है। इससे पहले श्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के भाग्य का निर्णय करने जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। श्री ठाकुर ने आज ब्राजील के कुयाबा में G20 कृषि मंत्रीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अन्य भाषाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि ये भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा ने हिन्दी राजभाषा के 75 वर्ष पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राजभाषा भारती पत्रिका का विशेषांक जारी किया तथा राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिए। उन्होंने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है, ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान व्यावसायिक और घरेलू स्तर पर चावल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों और घरेलू बाजार में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में अस्थायी उपाय के रूप में $1200 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के हिस्से के रूप में युवा फिल्म निर्माताओं के लिए श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड 2024 की शुरूआत की है। 55वां इफी महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इस खंड के जरिए इफी भारतीय डेब्यू फिल्मों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस खंड में देशभर की विविध कथाओं और सिनेमाई शैलियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह खंड नई प्रतिभा को एक मंच प्रदान करेगा और उभरते निर्देशकों के कार्य का प्रदर्शन करेगा। श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड में चयनित अधिकतम 5 डेब्यू फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। श्रेष्ठ डेब्यू भारतीय फिल्म खंड के लिए प्रविष्टियां खुली हुई हैं। युवा फिल्म निर्माता 23 सितंबर तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस चुनाव में 1,70,00,000 से अधिक मतदाता 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। केरल का फसल उत्सव ओणम पूरे संयुक्त अरब अमीरात में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इस उत्सव का पहला दिन उथरादम मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय कल मनाए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम तिरुओणम की तैयारी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में केरल के लोग रहते हैं। इस तरह ओणम संयुक्त अरब अमीरात के अत्यधिक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक उत्सवों में से एक बन चुका है। यह देश के समृद्ध बहुसांस्कृतिकवाद को दर्शाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।